Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Shimate Bhaktivinoda Shamane Dinamane Namaste Sarvati Deve Gauravane Pracharane Om Agnati Vrindasya Gyana Gyana Shalapaya Tatsuon Tatami
Stam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajiva
Sarvaitam Sarvaitam
Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitasha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shadhe Vrindavaneshwari Vrishbhanu Sute Devi Pranamami Hari Kriya Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama 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 Hare
Today we are hearing from Srimad Bhagavatam, 9th Canto, Chapter 11, Text Number 17.
आज हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय के 17वें श्लोक पर चर्चा करेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Tata Urvam Pramacharyam Oh, sorry, that's 18. Shri Pum Prasanga Etadrik
Shri Pum Prasanga Etadrik
Shri Pum Prasanga Etadrik
Shri Pum Prasanga Etadrik
Shavatra Trasam avaha
Sarvatra trasam avaha
Sarvatra trasam avaha Apishvaranam kim uta
Apishvaranam kim uta
Gramyasya griha chetasaha
Gramyasya griha chetasaha
Shripum prasanga etadrik
Stripum prasanga etadrik
Sarvatra trasam avaha
Sarvatra trasam avaha
Apishvaranam kim uta
Apishvaranam kim uta
Gramyasya griha chetasaha
Gramyasya griha chetasaha
Shripum prasanga etadrik
Stripum prasanga etadrik
Sarvatra trasam avaha
Sarvatra trasam avaha
Apishvaranam kim uta
Apishvaranam kim uta
Gramyasya Griha Chetasaha
Gramyasya Griha Chetasaha
Next
Stripum Prasanga Etadre Sarva Jor se boli
Louder
Stripum Prasanga Etadre Jor se boli Sarva Tretra Samavaha
Translation. The attraction between man and woman, or male and female, always exists everywhere, making everyone always fearful.
Anuvad. Stri tatha purush, athva nar aur mada ke madhye, आकर्षण हर जगह और हर समय पाया जाता है, जिससे हर व्यक्ति सदा भयभीत रहता है।
Such feelings are present even among the controllers like Brahma and Lord Shiva, and is a cause of fear for them.
यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावनाएं पाई जाती हैं, और उनके लिए भी ये भय का कारण है।
What to speak of others who are attached to household life in this material world?
तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं?
श्री प्रभुपाद की जय।
जय।
As explained above, when the feelings of love and transcendental bliss from the spiritual world are pervertedly reflected in this material world, they are certainly the cause of bondage.
तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जब आध्यात्मिक जगत से प्रेम तथा दिव्य आनंद के अनुभवों का इस जगत में विकृत प्रतिबिंब पड़ता है, तो वे बंधन का कारण बन जाते हैं।
As long as men feel attracted to women in this material world and women feel attracted to men, the bondage of repeated birth and death will continue.
जब तक इस जगत में पुरुष स्त्रियों के प्रति और स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित होती रहेंगी, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा।
But in a spiritual world where there is no fear of birth and death, such feelings of separation are the cause of transcendental bliss.
किंतु आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु का कोई भय ना होने से ऐसी वियोग की भावनाएं दिव्य आनंद का कारण स्वरूप हैं।
In the absence of, in the absolute reality, there are varieties of feeling, but all of them are of the same quality of transcendental bliss.
वास्तव में अनुभवों की विविधता होती है, किंतु वे सब दिव्य आनंद के समान गुण वाले हैं।
नारायणं
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
This pastime of the disappearance of Sita Devi is one of the heaviest parts of the entire Ramayana.
तो यहाँ जो लीला चल रही है कि सीता देवी अप्रकट होती हैं, तो यह सबसे भारी और सबसे गहरा विषय है पूरे रामायण का।
For those who are attached, and that means everyone who are devotee of Sita Ram, the absence of the divine couple as a couple is very painful to the heart.
तो जो भी भक्त सीता राम के प्रति आसक्त हैं, अर्थात सीता राम के भक्त हैं, उनके लिए माता सीता का इस प्रकार अप्रकट होना, वियोग होना, ये बहुत ही दुखदायी है।
As an extremely heavy pastime, actually.
और ये बहुत ही भारी और गहरा लीला है।
It is certainly not to be imitated, certainly not.
और इसकी निश्चित रूप से नकल नहीं करनी चाहिए।
Because in the 10th verse it's clearly stated that Lord Ram abandoned Sita Devi although she was pregnant.
और जैसा कि 10वें श्लोक में वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता देवी का परित्याग किया यद्यपि वे गर्भवती थी।
Don't imitate this man, you're not God.
तो आप भगवान राम की नकल मत कीजिएगा।
You can't break Lord Shiva's bow, so don't even think about abandoning a pregnant wife.
तो आप इस तरह से एक गर्भवती पत्नी को कभी भी त्याग नहीं कर सकते।
So Sita Devi went to the ashram of Valmiki Muni.
तो फिर सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई।
So her sons that later took birth as Lava and Kusha.
और फिर उनके दो पुत्र हुए जिनका नाम लव और कुश था।
And Valmiki Muni, he performed the rituals.
और फिर वाल्मीकि मुनि ने उनके लिए संस्कार किए।
So, this is quite amazing that Sita Devi was staying in the shelter of Valmiki Muni.
और यह काफी आश्चर्य की बात है कि माता सीता वाल्मीकि मुनि के शरण में थी.
This also can't be imitated by ordinary brahmacharis or sannyasis, certainly not.
और यह भी किसी साधारण ब्रह्मचारी या सन्यासी के द्वारा वाल्मीकि मुनि की तरह नकल नहीं की जा सकती कि वे स्त्री.
A similar amazing thing took place when the wife of Hiranyakashipu took shelter of Narada Muni.
और इसी तरह की घटना पहले भी हुई थी जब हिरण्यकश्यपु की पत्नी ने नारद मुनि का आश्रय लिया था.
After all, he was a sannyasi, and that was his.
तो नारद मुनि भी निश्चित रूप से एक सन्यासी हैं.
Eternal spaceman, Srila Prabhupada said.
Srila Prabhupada कहते थे वे शाश्वत रूप से एक अंतरिक्ष यात्री हैं.
In order to fly in outer space, Narada Muni doesn't need a spaceship that costs billions of dollars or a spaceship that looks ridiculous. He doesn't require all that rubbish.
तो नारद मुनि को अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के अंतरिक्ष यान की या किसी प्रकार के अन्य विशेष अंतरिक्ष में जो जाने के लिए कपड़ों की आवश्यकता होती है वो नारद मुनि को निश्चित रूप से नहीं आवश्यक.
He just strums on his vina and he can go wherever he likes, spiritual world, material world, Vaikuntha, wherever he, the Shastra explains, he goes all over the place. So that is Parivraja Kutari. Wherever he goes, he's spreading Krishna consciousness, or sometimes he's taking advice from Vaishnavas, and sometimes he's taking instruction from the Supreme Personality of Godhead.
और यही परिवराज का चार्य का नारद मुनि एक उदाहरण है कि वे वैकुंठ में भी जा सकते हैं, भौतिक जगत में भी जा सकते हैं, जब मन चाहे वो कहीं पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर भगवान का गुणगान करते हैं और कई बार भगवान से भी सीधा निर्देश पाते हैं.
Does anyone know the meaning of Parivrajakacharya?
क्या कोई परिवराज का चार्य का अर्थ जानता है? कृपया हाथ खड़ा करें.
Yes, Prabhu. Who roams around preaching the message? Yes, there's a you can translate that.
तो प्रभु जी ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति जो चारों तरफ घूमता है और भगवान के संदेश का प्रचार करता है वो परिवराज का आचार्य है.
The same thing said a different way.
और इसी चीज को एक अलग प्रकार से भी कहा जा सकता है. कोई बताएंगे?
You want to give a definition, Parivrajakacharya?
आप परिभाषा देना चाहते थे?
Yes, who travels around on bridges, very good.
तो प्रभु जी ने उत्तर दिया कि जो हर जगह भ्रमण करते हैं और भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं.
Literally it means everywhere and anywhere. That's the literal meaning, everywhere and anywhere.
और इसका शाब्दिक अर्थ है कि कहीं भी और हर जगह है.
We see that Narada Muni goes down to the lower planets.
हम देखते हैं कि नारद मुनि नीचे के लोकों में भी जाते हैं.
The amazing thing is, the demons all know who he is. They know who he is. They know he's a Vaishnava. They know he's a surrendered soul of Lord Vishnu. It doesn't bother them at all. They have so much regard for him.
हालांकि असुर लोग जानते हैं कि नारद मुनि वैष्णव हैं, विष्णु के भक्त हैं, फिर भी वे नारद मुनि का आदर करते हैं.
So then we see in modern society how modern demons have sunk lower than the demons of yore, because at least the demons of yore had some regard for exalted Vaishnavas. I mean, there might be a fight and all that, but they were heroes, you know. Now they're just gundas.
तो जैसे कि हम देखते हैं कि बाहर भी लोग भले आसुरित हैं लेकिन वे वैष्णवों का आदर करते हैं, लेकिन आज ज्यादातर लोग गुंडे हो गए हैं.
So everywhere and anywhere.
तो परिवराज का चार्य शब्द का अर्थ है हर जगह और कहीं पर भी.
Actually, that's the tradition in our line of Chaitanya Mahaprabhu.
और चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है उसमें ये एक रिवाज भी है.
In Madhyalila, his role as the perfect acharya, Mahaprabhu went everywhere and anywhere, preaching pure Krishna consciousness and converting. He converted millions all over Bharatasvara to chanting the holy name. Millions he converted.
और जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वर्णन भी आता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी जगह और प्रत्येक जगह उन्होंने भ्रमण किया और करोड़ों की संख्या में उन्होंने लोगों को भगवान का भक्त बनाया.
Unfortunately, with time, the influence of Mahaprabhu became eroded. Like in South India, there's very few devotees of Chaitanya Mahaprabhu remaining, some, but nothing like it, considering that he was surrounded by hundreds of millions of devotees in his manifest lila and left behind a legacy. Nowadays, there's very few devotees of Chaitanya Mahaprabhu in South India.
So, durbhagyavash, lekin aaj Mahaprabhu ke path par chalne wale jo Vaishnav hain, wo ab kam bache hain, jaisa ki pehle महाप्रभु के समय जब महाप्रभु प्रकट लीला कर रहे थे उस समय लाखों भक्त हो गए थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में बहुत ही कम ऐसे वैष्णव हैं जो चैतन्य महाप्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं। भक्ति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यह।
So whenever and wherever there is a decline of religious practice and a predominant rise in irreligion, Krishna says, I invent myself. Myself, he says, personally.
जैसा कि भगवत गीता में वर्णन आता है कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है और अधर्म बढ़ता है तो भगवान प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान आते हैं।
Now be honest with my question. How many of you wondered if that's the case, if that's Krishna's promise in Bhagavad Gita, then how come he doesn't advent himself today?
तो महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर भगवान ने ये वचन दिया है भगवत गीता में कि वो धर्म की ग्लानी होने पर आते हैं, तो आज भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? आप में से कोई जवाब देंगे?
How many of you wondered about that? Be honest.
तो आप में से कितने लोगों को ये आश्चर्य है कि ऐसा सत्य हो रहा है? ये आश्चर्य कितने लोगों को है कि भगवान नहीं आ रहे
हैं?
और प्रभुपाद इस प्रश्न का उत्तर देते हैं।
श्री प्रभुपाद said Krishna has left it to this Krishna consciousness.
तो भगवान तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है इस हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में।
हरि बोल
हरि बोल
जय गो हरि बोल
हरि बोल।
So try to understand this movement is incarnation of Chaitanya Mahaprabhu.
तो ये बात समझने की है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन के रूप में अवतार लिया है।
Because he is Radha and Krishna combined together, therefore this movement is the combined incarnation of Radha and Krishna. Please, you just try to understand.
तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अन्य नहीं है, इसलिए ये जो आंदोलन है ये श्री राधा कृष्ण का ही अवतार है।
Yes, how high this movement is. How high this movement is.
तो ये आंदोलन बहुत ही उच्च है।
We don't have to smoke hashish to get high in Krishna consciousness.
तो हमें किसी प्रकार का नशा करने की आवश्यकता नहीं है ऊंचा उठने के लिए।
We just enjoy a good kirtan, that's all.
हम अगर एक अच्छे कीर्तन को एंजॉय करें, उसका आनंद लें, तो हम ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं।
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
So obviously Srila Prabhupada was Paribhajaka Acharya everywhere and everywhere. He dared to go to the west, whereas the Shastra says whoever crosses the ocean will fall down. So even some exalted Gaudiya Vaishnavas, they were afraid to go to the west because they all knew the statement of Shastra, whoever crosses the ocean will fall down.
तो श्रील प्रभुपाद परिव्राज का आचार्य हैं, वो हर जगह गए, वो पश्चिम देशों में भी गए, जबकि शास्त्रों में वर्णन है कि जो समुद्र को पार करके जाएगा वो उसका पतन हो जाएगा। प्रभुपाद के कई गुरु भाई थे जो कि इस डर से विदेश नहीं गए, लेकिन प्रभुपाद ने ये पूरा साहस लिया और वे विदेश जाकर उन्होंने भगवान के संदेश का प्रचार किया।
So, abaya means fearless, right? Abaya, fearless.
अभय मीन्स जो कि जिन्हें कोई भय ना हो। प्रभुपाद इसी तरह से अभय थे। प्रभुपाद शिल प्रहलाद महाराज की ही परंपरा में हैं।
One of our Mahajans, one of the 12 greatest authorities on Krishna consciousness in the universe.
पूरे ब्रह्मांड में जो कृष्ण भावनामृत के 12 महाजन हैं, उनमें से एक प्रहलाद महाराज हैं।
So we see that our acharyas also fearless.
और हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज की तरह हमारे आचार्य भी
प्रहलाद
महाराज के पद चिन्हों का पालन करते हुए वे भी निर्भय हैं।
This is our meditation.
और यही हमारे ध्यान का केंद्र होना चाहिए।
Okay, now let me meditate.
ऐसा नहीं कि हम योगियों की तरह कोई ध्यान करें.
Sri Prabhupada said, I've seen so many yogis simply snoring.
Prabhupada कहते थे कि मैंने कितने सारे योगियों को देखा है जो ध्यान में खराटे भरते हैं.
Before I became a devotee, I was in San Francisco, California, and Buddhism amongst my generation at that time, amongst the youth, Buddhism was very popular.
और जब मैं भक्त बनने से पूर्व कैलिफोर्निया में अमेरिका में था तो उस समय मैंने देखा कि हमारे जो युवा वर्ग था उसमें बुद्धिज्म बहुत प्रचलित था.
So I went to a Buddhist temple just to check it out because I was searching for meaning in life and I was searching for spirituality. So I went to a Buddhist temple.
और मैं आध्यात्मिकता की खोज में था, आध्यात्मिक जीवन चाहता था, इसलिए मैं एक बुद्धिस्ट टेंपल में गया.
So they were sitting down on hard black pillows about one third of a meter tall to meditate.
और वहां जो मंक थे, जो वहां सन्यासी थे, वो लोग ध्यान करने के लिए काले गद्दे के ऊपर बैठे थे.
I closed my eyes and I tried to experiment with meditation.
तो मैंने भी अपनी आंखें बंद की और प्रयास किया ध्यान करने का.
It was a 100 year old wooden building, so I could hear the floorboards going creak creak as people walked around. I heard the floorboards.
और क्योंकि वो एक लकड़ी की भवन था, तो 100 वर्ष पुराना वो लकड़ी का भवन था, तो उसपे जब कोई चलता था तो ऐसी आवाज आती थी की 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 की.
I smelled the smells of a 100 year old building, you know.
और उसमें से एक पुरानी भवन की बदबू भी आ रही थी.
Every now and then I would hear a thwack, a noise, thwack.
तो मैंने एक आवाज सुनी.
It was the Zen master. The Zen master had split bamboo.
जो Zen master होते हैं, जो उनके पास दो छोटे-छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं.
When his disciples would doze off while so-called meditation.
जब उसके शिष्य जो ध्यान में तथा कथित ध्यान में जब लगते थे और सोने लगते थे,
he would go over and thwack them on the shoulder with a split bamboo.
तो वो उन बांस के टुकड़ों से, वो जो मास्टर थे, वो जो वहां पे सन्यासी थे, वो अपने उन शिष्यों को पिटाई लगाते थे पीठ पर.
I don't think the devotees would appreciate that, where you're dozing off chanting japa and somebody thwacks you with split bamboo on the shoulder.
और भक्त लोग इस चीज की सराहना नहीं करेंगे कि जब करते हो अगर उन्हें नींद आ जाए तो कोई आकर उनके पीठ पर इस तरह से बांस के टुकड़े से पिटाई लगाए.
So I smelled the smells, heard the sounds, and then finally the meditation time was over. That was my meditation, hearing sounds and smelling smells.
तो मैं पूरे ध्यान में मुझे सिर्फ वो आवाजें सुनाई देती रही और उस भवन की, पुराने भवन की गंध आती रही.
They had a ceremony, they had a shrine inside this old building.
तो वहां पर एक उत्सव मनाया जा रहा था.
Then they had a program where they were chanting some mantras.
और फिर उन्होंने एक कार्यक्रम किया जिसमें वे कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे.
They were using gongs, you know, brass gongs and cymbals and chimes and bells and all that.
और वे कई सारे वाद्य यंत्र, कांसे के बने हुए वाद्य यंत्र बजा रहे थे.
I was a little attracted by that because it stirred up my recollection of kirtan from my previous lifetime, you know.
तो वो मुझे काफी आकर्षक लगा क्योंकि मुझे पिछले जन्मों के जो संकीर्तन किया था उसका स्मरण, उसकी वजह से मुझे वो आकर्षक लगा.
But I never went back to that place because there was no philosophy that I could make any sense out of it. It was nonsense, literally nonsense.
तो मैं वहां पर वापस नहीं गया क्योंकि वहां जो उनका सिद्धांत था वो बकियानुस, वो खराब था.
Srila Prabhupada's manifest pastimes, Paribhajakacharya.
तो श्रील प्रभुपाद ने जब अपनी प्रकट लीला की तो उन्होंने प्रदर्शित किया कि वे किस प्रकार परिव्रज का चार्य हैं.
Now, in this verse, Shukadeva Goswami is pointing out that everyone is fearful on account of the relations of male and female. That's interesting.
तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं कि व्यक्ति भयभीत क्यों होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष के बीच जो आकर्षण होता है वो व्यक्ति को भयभीत करता है.
Nowadays, one partner is always afraid that the other one's going to leave them. I mean, they you know, feel very insecure. So a lot of marriages are put together with sellotape these days.
तो आज के समय में जो एक जो दोनों में से एक व्यक्ति होता है वो अपने संबंध के प्रति बहुत भयभीत होता है कि उसे जो दूसरा उसका पार्टनर है वो उसे कभी भी छोड़ सकता है.
So everywhere there's fear in this world, even in relationships so-called love.
तो जो तथाकथित प्रेम है उसके संबंध जितने भी हैं वहां इस तरह का भय होता है.
Therefore these relationships were not spoken of favorably by Prahlad Maharaj.
तो इसलिए प्रहलाद महाराज भी इस तरह के जो संबंध हैं उन्हें अनुकूल नहीं बताते हैं.
You know the words disparaging? No. He spoke rather negatively about society, friendship and love as mundane, not helpful in this world.
तो प्रहलाद महाराज जो संबंध हैं ऐसे संबंधों को अनुकूल नहीं बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं कि इस संसार में जो इस तरह के संबंध है वे सही नहीं है.
But love is supposed to be everything in this world.
लेकिन हम देखते हैं कि प्रेम इस जगत के लिए सब कुछ है.
Take February 14th for example.
उदाहरण के लिए 14 फरवरी को लीजिए.
Saint Valentine's Day.
Saint Valentine's Day.
So all over the world, people are exchanging paper cards with hearts on them and little angels and little cupids and all that. You know, interesting that Cupid has made his way into Western mythology, but they have no idea there's an actual Cupid. But they realize it's going on, that Cupid is working, but they don't know that it's actually true. They don't know that, they just experience it.
तो उस दिन 14 फरवरी को पूरे विश्व भर में लोग आपस में एक दूसरे को कार्ड्स देते हैं और उन कार्ड्स पर छोटे छोटे परियों की और एक कामदेव की छोटे बच्चे के रूप में फोटो बनाते हैं. तो महाराज बता रहे हैं कि कामदेव इस तरह से वेस्टर्न माइथोलॉजी में भी आ चुके हैं, वहाँ की जो उनके सिद्धांत है उनमें भी आ चुके हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि वास्तव में कामदेव का अस्तित्व है.
So people in the West speak of love at first sight, you know, boy meets girl.
तो पश्चिमी देशों में लोग बात करते हैं कि पहली नजर का प्यार.
What is this? A perverted reflection of the gopis and Krishna, certainly.
तो यह क्या है? यह एक प्रतिबिंब है, जो कि विकृत प्रतिबिंब है, जो प्रेम गोपियों और कृष्ण के बीच है, उसी का एक विकृत रूप यह है.
In the material world, when young girls see a handsome, charismatic young man.
तो जब इस भौतिक जगत में एक युवती किसी युवक को देखती है,
they go, oh, he's so cute.
तो वो उनके मन में इस तरह की भावना आती है कि ओ ये कितना क्यूट है.
Well, that's perverted reflection because when the gopis see Krishna, they go, oh, Krishna is so wonderful, so wonderful. It's a perversion. So everything in this material world is a perversion.
तो जब गोपियां जो ये युवती का प्रेम है ये एक विकृत प्रतिबिंब है जो प्रेम गोपियों का कृष्ण के प्रति है. जब गोपियां भी कृष्ण को देखती हैं तो वो इस तरह से आश्चर्यचकित होती हैं कि कृष्ण कितने आकर्षक हैं.
तो therefore this material world is compared to the reflection of a banyan tree in a pool of water or lake.
तो ये भौतिक जगत एक प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब आध्यात्मिक जगत का. और भगवत गीता में ये तुलना भी की गई है कि भौतिक जगत को एक बड़ के वृक्ष का प्रतिबिंब बताया गया है, जब हम पानी के तालाब में देखें उस
प्रतिबिंब. But it becomes distorted. The wind blows and there are some waves. It becomes distorted. So that's called perverted reflection.
तो जो झील के किनारे पर बड़ के वृक्ष का प्रतिबिंब झील में दिखता है वो वास्तव में है, लेकिन लेकिन क्योंकि हवाएं चलती है और लहरें आती हैं झील में अगर, तो उसकी वजह से वो हिलने लगता है, तो इस तरह से विकृत रूप दिखने लगता है उस बड़ के वृक्ष का.
So everyone's attached to the opposite sex in this material world, and if you like, you can call it natural.
तो इस भौतिक जगत में हर कोई मैथुन सुख के प्रति आसक्त है और उसे वो बहुत ही स्वाभाविक मानते हैं.
Because we are part and parcel of Radha and Krishna. Notice I'm saying we're part and parcel of Radha and Krishna.
तो क्योंकि हम राधा कृष्ण के अंश हैं.
Srila Prabhupada always preaches, we are part and parcel of Krishna.
श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं.
But I've heard at least one lecture where Prabhupada says, we are part and parcel of both Radha and Krishna. So in other words, there's no such thing as Krishna without Radharani. No such thing.
तो एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम श्री राधा कृष्ण के अंश हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण बिना राधा के नहीं हो सकते हैं.
So all the relationships in this material world are the perverted reflection of the love between Radha and Krishna. That explains the whole situation.
तो इस भौतिक जगत में जितने भी संबंध हैं, वो सब एक विकृत रूप हैं, जो राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम है उसका.
But Srila Prabhupada is pointing out that these relationships in the material world must result in bondage, bandhana, karma bandhana.
और प्रभुपाद बताते हैं कि इस भौतिक जगत के जो संबंध है वो कर्म बंधन का कारण बनते हैं.
Must result in death.
और फिर उसका जो परिणाम होता है वो है मृत्यु.
It's very interesting because, you know, Christianity is watered down Vaishnavism.
तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो ईसाई धर्म है वो वैष्णव धर्म का ही एक विकृत रूप है.
There are some gems of sayings in Christianity that actually pure Krishna conscious philosophy, but unfortunately they have no bona fide spiritual master. They're non-vegetarian. Otherwise, it's a great religion.
तो ईसाई धर्म काफी हद तक वैष्णव धर्म से मिलता है. कितने सारे उनकी जो प्रवचन, जो उनकी प्रसिद्ध लोकोक्तियां हैं, वो वैष्णव धर्म से मिलती हैं. लेकिन क्योंकि वहाँ पर कोई प्रमाणिक गुरु नहीं है, इसलिए उस धर्म का सही से प्रचार नहीं हुआ है.
There's actually a little candle flame of wisdom there, little flickering candle flame of wisdom in Christianity.
तो ईसाई धर्म में भी एक जो ज्ञान है, वो उस तरह का है जैसे एक मोमबत्ती की बत्ती होती है, जो कि लो होती है, जो कि हिलती रहती है.
So, along the lines of Prabhupada's purport here, there's a very famous Christian saying.
और प्रभुपाद की इन पंक्तियों के बीच ही महाराज को एक ईसाई धर्म की एक प्रसिद्ध लोकोक्ति का स्मरण हो रहा है.
The common saying amongst Western Christians, or maybe they say it in India also, I don't know.
पश्चिम देशों में जो ईसाई लोग हैं उनके बीच में ये बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है.
Of course, Indian Christians are Western Christians.
और भारतीय जो ईसाई हैं वे भी पश्चिमी ईसाई ही हैं.
The saying is, the wages of sin is death.
Wages.
The wages, like salary.
तो जो ये प्रसिद्ध लोकोक्ति इस तरह से है. Wages of.
It's a poetic use of the word wages. Wages means like you work and you get a salary.
It's death.
It's a poetic way of saying result.
तो इसका वो saying जो लोकोक्ति है वो इस तरह से है कि पाप का जो परिणाम है वो है मृत्यु.
I don't know if you ever run across Christians, but if they ever say to you, in a very, you know, the English word haughty, haughty means in a very proud way, they could say, well, don't say anything about karma in the Bible, so it's just your nonsense Hindu mythology, there's no such thing.
तो बड़े ही घमंड के साथ अगर आप किसी ईसाई से मिलेंगे तो वो कर्मों के विषय में बोलेगा कि कर्म का कहीं पर भी वर्णन बाइबल में नहीं आता है, ये सब भारतीय हिंदू माइथोलॉजी है.
Really? You just smile and you say, what about the statement in the Bible that the wages of sin is death?
तो आप उनकी तरफ मुस्कुरा कर कह सकते हैं कि बाइबल में जो ये लोकोक्ति है कि पाप का फल मृत्यु होता है, इसका क्या अर्थ है फिर?
In this context, the word wages means or salary. In other words, you work and you get a result from the work. You get a salary from working hard. So the salary for sinful activity, the reaction for sinful activity is death. So they know this. Unfortunately, they don't know what is sin and what is not sin. They don't know.
तो क्योंकि ईसाई लोग ये तो जानते हैं कि पाप का जो फल है वो मृत्यु है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि क्या पाप है, पाप है क्या वास्तव में.
Nowadays they just teach people about Santa Claus. Santa Claus.
आजकल लोग जो ईसाई लोग हैं वो प्रचार करते हैं लोग अन्य लोगों को तो सिर्फ सांता क्लॉज का प्रचार करते हैं.
Excuse me, but what does that got to do with religious principles?
तो इस तरह से उन्होंने उन नियमों को हटा दिया है.
So the idea is that religious principles must be universal.
तो ये विचार है कि जो धार्मिक सिद्धांत हैं वो पूरे विश्व के लिए पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही हैं.
There must be some reflection, some manifestation of Sanatan Dharma.
तो हर जगह है सनातन धर्म का ही एक प्रतिबिंब होगा.
Interesting enough that most Indians have a rough concept of Sanatan Dharma.
और आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे भारतीयों को सनातन धर्म के विषय में सही ज्ञान नहीं है.
Unless they've heard from pure devotees of the Lord, they can't quite define it very accurately, but they have a rough idea.
और जब तक उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त से सनातन धर्म के विषय में ना सुना हो वो सही प्रकार से सनातन धर्म को नहीं बता सकते.
If I asked you, what is the definition of Sanatan Dharma, what would you say?
तो अगर महाराज कह रहे हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सनातन धर्म की क्या परिभाषा है तो आप क्या बताएंगे?
Ever existing. That dharma which is ever existing.
तो सनातन धर्म का अर्थ है जो हमेशा अस्तित्व में रहता है, कुछ नया नहीं है, कुछ अभी नहीं बनाया गया.
Another way of saying ever existing is eternal.
और हमेशा जिसका अस्तित्व है, इसका अर्थ हुआ कि वो शाश्वत है.
There are so many religious principles, and nowadays there are so many religions all over the world.
आज के समय में पूरे विश्व भर में इतने सारे धर्म हैं.
But have you ever stopped to think which is the oldest religion in the world?
लेकिन आपने कभी रुककर विचार किया है कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है?
How many of you thought about this? Which is the oldest religion in the world?
आप में से कितने लोगों ने ये सोचा है कि सबसे जो पुराना धर्म कौन सा है?
Some of you. So here we're hearing about Sita and Ram. This is prior yuga. This is millions of years ago. Of course, nowadays, modern atheistic secular people can't swallow the idea that there was human civilization millions of years ago. But that's when Ramlinga took place, millions of years ago.
तो जैसा कि हम यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है सीता राम का, ये करोड़ों वर्ष पूर्व ये घटना हुई थी. लेकिन जो आज के समय के जो नास्तिक हैं, जो धर्म निरपेक्षवाद का प्रचार करते हैं, वो इस चीज को नहीं स्वीकार कर सकते कि मनुष्य का अस्तित्व करोड़ों वर्ष पूर्व भी था.
Actually, the central government is now calling for input on what the school books in India should say, how they should be revised.
तो जो धर्म निरपेक्ष राज्य के जो राजनेता हैं, वो चाह रहे हैं कि आज के समय स्कूलों में जो पुस्तकें हैं उनमें क्या पढ़ाया जाता है उसके विषय में वो लोग विचार कर रहे हैं.
The first thing on the list is that school children and up to university level should not be taught that man came from apes.
तो पहला जो मुख्य बिंदु है उनका वो यही है कि अब स्कूल के बच्चों को और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज में भी ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि मनुष्य बंदरों से आया है.
I received a joke picture on the net one day and somebody sent it to me.
तो मैंने एक बार एक जोक, एक मजाक चुटकुला जो था वो मुझे मैसेज मिला.
It was a photograph, actual photograph, a huge, angry-looking ape.
तो एक उस जोक में एक फोटो था जिसमें एक बहुत ही बड़ा मोटा सा एक बंदर था जो बहुत क्रोधित था.
Caption to the picture is, he says, "Stop saying you're descended from us."
वो जो क्रोधित बंदर है वो कह रहा है कि आप ये प्रचार करना बंद करो कि आप हमारे वंशज हो।
You guys are a bunch of jerks.
तो वो कह रहे हैं कि आप लोग एक कूड़ेदान के प्रोडक्ट हो,
Actually, apes are vegetarian, you know.
क्योंकि जो बंदर होते हैं वो शाकाहारी होते हैं
They're very intelligent.
और वे बहुत बुद्धिमान भी होते हैं।
So, if man is descended from apes, how come there are so few vegetarians today in the modern world? Well, if we're descended from apes, we ought to also be vegetarian, isn't it?
तो अगर हम भी बंदरों से आए हैं तो हमें भी शाकाहारी होना चाहिए था।
I mean, they eat bananas, fruits, tender bamboo shoots, and that's it. And they're like so powerful, so nobody can wrestle with an ape.
तो जो चिंपांजी या फिर जो बड़े बंदर होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, हालांकि वो केला खाते हैं, फल खाते हैं और गन्ने के जो लकड़ी होती है उसको चूसते हैं।
So that's another mythology that if you're a vegetarian, you're going to become weak.
और ये भी एक गलत धारणा है कि अगर हम शाकाहारी रहेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे।
My mother was a hardcore meat eater.
मेरी माताजी मांसाहारी थी।
I was rescued. I mean, I lived outside my home. I moved to the San Francisco Bay Area, where all the young people of my generation were vegetarians. So that's how I became converted to be vegetarian because it was the in thing to do amongst the young people of America in the 1960s.
तो मेरे समय का जो युवा वर्ग था वो शाकाहारी था, तो इसीलिए मैं घर से बाहर निकलकर उनके साथ रहने लगा।
So, but she used to worry. See, my brother's also a devotee. My brother's also a devotee.
और मेरे भाई भी भक्त हैं।
So when we were young devotees, my mother used to be in anxiety because she'd read all these books about high protein diet was necessary for good health. That was in the early 60s, that was a philosophy. Now it's been trashed. Now nutritionists say the opposite, just a small amount of protein. They changed it, you see, the scientific theory changed.
तो मेरी माता जी बहुत भयभीत थी क्योंकि हम दोनों ही भक्त हो गए थे, शाकाहारी हो गए थे, तो वे डरती थी कि इनको अब हाई प्रोटीन डाइट नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये धारणा बदल गई है।
But my mother was polluted by propaganda that you have to eat a lot of meat and high protein in order to be healthy at all. So she was contaminated by that concept. Well, it was decades later that that concept went out of fashion, and they even redid the food pyramid. Food pyramid means the amount of meat recommended being a diet is now very small on the U.S. Department of Agriculture. They have a pyramid showing that fruits and vegetables should be your primary, fruits, vegetables, and grains should be your primary part of your diet. Now they revised it, you see.
तो पहले के समय ये ज़्यादा प्रचार था कि मांस का भक्षण किया जाना चाहिए, हाई प्रोटीन लेना चाहिए, तो मेरी माता भी इस धारणा से दूषित थी, लेकिन कुछ दशकों बाद में ये धारणा बदल गई है और अब जो जो हमारे भोजन के लिए उन्होंने एक पिरामिड बनाया है कि क्या हमारी डाइट में होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, तो उसमें ज़्यादातर जो भाग है वो फलों का और सब्जियों का है।
So fearing that my brother and I were going to waste away from malnutrition due to being vegetarians, she actually wrote to Srila Prabhupada.
और मेरी माता भयभीत थी कि कहीं हम दोनों कुपोषण का शिकार ना हो जाएं, तो वो शील प्रभुपाद के पास गई।
She expressed her anxiety that we weren't going to get sufficient nutrition.
और उन्होंने अपनी जो उनका भय था वो शील प्रभुपाद के सामने रखा कि कहीं मेरे बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो जाएं।
Srila Prabhupada kindly wrote back to her a very polite letter.
और
Polite. He was very polite. He didn't scold her. He rarely scolded people like that, innocent people. He didn't scold her. He wrote back very politely.
और श्रील प्रभुपाद ने उन पर क्रोध नहीं किया, उन्हें डांटा नहीं और बड़ी ही विनम्रता से उन्हें जवाब दिया।
He said, "You take care of their bodies. I'll take care of their soul."
तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आप इनके शरीर का ध्यान रखती हैं और मैं इनकी आत्मा का ध्यान रखता हूँ।
श्री प्रभुपाद की जय।
yeah.
So, I mean, because she used to pump us full of vitamins and all that, vitamins and protein. When I would go home and visit my mother, she would make these, you know, 4 protein shakes per day. I mean, it tastes really good, you know, but I mean, too much overdose protein, because she thought as long as I was there, she would do something to build up my body with protein, you see.
तो जब भी मैं घर जाया करता था तो मेरी माता मुझे बहुत ही हाई प्रोटीन की चीजें दिया करती थी वो बहुत ही स्वादिष्ट होती थी
Actually because she had met Srila Prabhupada you know so he knew her
क्योंकि वे श्रील प्रभुपाद से मिली थी इसलिए श्रील प्रभुपाद उन्हें जानते थे
He said she was a good soul
तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वे बहुत ही अच्छी एक अच्छी जीवात्मा है
But she was misled by bad association in other words Non-devotee family, non-veg, everything. I mean, they were religious Christians, but what is the use because they're non-vegetarian. As my family, my grandma, and all those people, they were all non-vegetarian.
तो क्योंकि भले ही वे एक अच्छी स्त्री थी, लेकिन वो दूषित हो गई थी क्योंकि उनके परिवार से ही सभी लोग मांसाहारी थे.
But she had a chance to do some devotional service.
लेकिन उन्हें मौका मिला कि वे भी भक्ति में कुछ सेवा कर सकें.
When I would visit at home, I would go visiting at home, she knew we wouldn't need anything unless it was offered to Krishna. We trained her up.
तो जब भी मैं घर जाता था तो वो जानती थी कि मैं घर का नहीं खाऊंगा मैं कृष्ण प्रसाद ही लूंगा
There was no altar in her house, but there was a cabinet with a mirror on it. And so we put up some pictures of Prabhupada and Krishna and make it into an altar.
तो जब हम घर जाते थे तो वहां पर भगवान की कोई अल्टर नहीं था ऐसे वेदी नहीं थी लेकिन हम श्रील प्रभुपाद की और भगवान की कुछ फोटो ले जाते थे
And knowing that we had to offer the food or we wouldn't eat it, she would dutifully make the plate for the offering.
तो क्योंकि वो जानती थी कि हम भगवान को भोग लगाए बिना नहीं लेंगे तो इसलिए वो भगवान के लिए एक अलग से प्लेट बना देती थी
So she wasn't really a demon or she couldn't have done that.
इसलिए वे आसुरी तो नहीं थी
Also, my father made some horses for the 1970 Rath Yatra, you know, in Puri. There are horses in the front of the chariot. So my father built some horses.
और जैसा कि जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा में आप देखेंगे कि रथ के आगे घोड़े होते हैं लकड़ी के घोड़े बने होते हैं तो मेरे पिताजी ने वहां जो रथ यात्रा होने वाली थी उसके लिए घोड़े बनाए थे
Just like Puri, they were mounted on the front of the chariot.
और जैसे कि पुरी में रथ के आगे अग्रभाग पर ये घोड़े बांधे जाते हैं
And my mother painted them.
और मेरी माता जी ने जो मेरे पिताजी ने घोड़े बनाए थे उनको उनको रंग किया
They both had some association with Lord Jagannath Rath Yatra.
और इस तरह से उन्हें जगन्नाथ रथ यात्रा में कुछ सेवा करने का मौका मिला
Also, when I was a new devotee, I used to feel anxiety because I knew that they had lots of bad habits who were non-veg and all that.
तो मुझे कई बार भय भी होता था जब मैं नया नया भक्त बना था क्योंकि मैं जानता था कि मेरे माता पिता में कुछ खराब आदतें हैं जैसे मांसाहार करना
So I wanted to have some peace of mind. I wanted to have some peace of mind.
और इसलिए मुझे मन की शांति नहीं थी
Somehow or other I got a hold of some of Srila Prabhupada's remnants from his lunch.
और मैं कई बार श्रील प्रभुपाद जो दोपहर में खाना लिया करते थे उसमें से कुछ उनका जो महाप्रसाद था वो रख लेता था
Without explaining exactly what it was, I gave some to my mother and I gave some to my father and I gave some to an old family friend.
तो बिना उनको बताए मैं मेरे माता जी को कुछ भाग दिया करता था कुछ पिताजी को और कुछ जो पुराने घर के सदस्य थे उनको
So when they had to go down to the court of Yamaraj, Yamaraj would have been very surprised when the defense attorney would make an announcement.
तो जब वे यमराज के लोक में जाएंगे तो यमराज को बहुत ही आश्चर्य होगा जब वहां पर डिफेंस के जो
Yes, my lord, we know that they were very sinful, non-vegetarian.
तो जो वहां पर डिफेंस के जो वकील होंगे वो कहेंगे यमराज को कि यमराज हम जानते हैं कि ये बहुत पापी हैं
Like the demons, my father was very fond of drinking wine.
और मेरे पिताजी शराब पीने के भी बहुत आदी थे.
He was neither one of them were real demons, so they weren't. They were just bad habits.
वो आसुरी नहीं थे, बस कुछ खराब आदतें थी.
So in the court of Yamaraj, Yamaraj Rudra goes, does anybody have anything to say in favor of these souls who committed sinful activity?
तो यमराज के जब न्यायालय में ये लोग पहुंचेंगे तो वहां पर यमराज पूछेंगे कि किसी को इनके पक्ष में कुछ कहना है.
The defense raises his hand, yes, my lord.
और तब वहां पर जो डिफेंस के लिए जो व्यक्ति होंगे वो अपना हाथ खड़ा करेंगे और कहेंगे हाँ.
Really, what is that?
तो यमराज पूछेंगे अच्छा क्या कहना है आपको.
Well, they had remnants from the plate of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Jagadguru.
तो तब वो डिफेंस के व्यक्ति कहेंगे कि यमराज इन्होंने शिल प्रभुपाद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami शिल प्रभुपाद जो जगतगुरु हैं उनका महाप्रसाद ग्रहण किया है.
Please don't think for even a split moment that Yamaraj as Mahajan doesn't know who Prabhupada is. Certainly he knows who Prabhupada is.
तो आप बिल्कुल भी इस चीज पे शंका मत कीजिए कि यमराज जो कि महाजन है वो नहीं जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद कौन है.
He would say to the defense, so they actually ate remnants from श्रील प्रभुपाद.
तो यमराज बड़े आश्चर्य से फिर पूछेंगे अच्छा तो क्या इन्होंने श्रील प्रभुपाद का महाप्रसाद ग्रहण किया है.
You're under oath, you know, you can't tell a lie. Under oath you can't tell a lie.
तो क्योंकि वहाँ पर शपथ ग्रहण भी होता है तो इसलिए वहाँ पर झूठ नहीं बोला जा सकता.
Yes, my lord, the sun and the moon and the wind are the witnesses. They ate remnants from Jagadguru Srila Prabhupada.
तो वो सूर्य और चंद्रमा और हवा वायु की शपथ लेते हुए बोलेगा कि हाँ हाँ यमराज इन्होंने श्रील प्रभुपाद का महाप्रसाद ग्रहण किया है.
And they heard the kirtan, they heard the holy name.
उन्होंने कीर्तन सुना हरि नाम सुना है.
They both served Lord Jagannath.
उन्होंने दोनों ने ही भगवान जगन्नाथ की सेवा की है.
Yamaraj sees hundreds of millions of fallen souls, so he'd be surprised, really?
तो यमराज क्योंकि वो इतने करोड़ों अरबों जीवों को पापी जीवों को देखते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसा भी कोई जीव है.
They served Lord Jagannath.
तो वो बड़े आश्चर्य से पूछेंगे क्या इन्होंने वास्तव में जगन्नाथ जी की सेवा की है.
Don't think the Mahajan, don't think the Mahajan Yamaraj doesn't know who Jagannath is.
तो आप ऐसा मत सोचिए कि महाजन यमराज जगन्नाथ जी को नहीं जानते हैं.
Yes, my lord, they both attended Rath Yatra and heard the holy name and served Lord Jagannath personally.
तो जो डिफेंस में व्यक्ति होंगे वो कहेंगे कि हाँ यमराज इन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिया हरिनाम सुना जगन्नाथ जी की सेवा की.
Oh, that is very wonderful.
तब यमराज बहुत खुश होंगे और कहेंगे ओ ये तो बहुत अच्छी
so,
बात है.
They'll have to suffer something for the sinful activities, but I will make certain that they come again to human form of life and association with devotees.
तो हालांकि उन्हें अपने पाप कार्यों के लिए कुछ समय के लिए सजा भुगतनी होगी लेकिन इस बात की पूरी ये बात होनी है कि उन्हें मनुष्य जीवन मिलेगा और भक्तों का संग अवश्य मिलेगा.
जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय. ग्रंथदर्शी मां भागवतम की जय. एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन?
किन्हीं का कोई प्रश्न है?
Okay, thank you very much.
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोंद गोस्वामी महाराज की